الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں برکت دے، ہمارے دن میں برکت دے، ہمارے علم اور عمل میں برکت دے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. دورہ قرآن 2024 2024، آج اس میں سے ہم کریں گے پارا نمبر 20. الحمدللہ آج ایک اور سٹیپ اوپر ہوئے. 1 کے ساتھ شروع ہونے والے مراحل میں سے نکل کر آج ہم 20s میں آگئے. اپنی عمر کو یاد کیجئے، جب کبھی عمر کی یہ گھڑی شروع ہوئی تھی تو کیسی فیلنگ تھی؟ اور پیچھے بھی آپ کو 11th پارے کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ زندگی میں جو چینجنگ والا وقت ہوتے ہیں نا، چینجنگ ٹائم، آپ نے چاہے ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ میں آنا ہو یا ٹرین لے سے نکل کر آپ کو بس میں آنا ہو، یہ بہت مشکل ہوتے ہیں. ایسے وقت محاسبے کے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے وقتوں میں شعور کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو ہم سب ذرا سا اپنا محاسبہ کریں. 19 پارے پڑھ لیے. اللہ کی اتنی رحمتیں سمیٹ لیں، اتنی خیر اس نے ہمیں دے دی، کیا اس نے میری زندگی میں کوئی اثر ڈالا؟ محاسبے کے بغیر پڑھنا تو ایسے ہی ہے کہ کھاتے ہی جائیں کھاتے ہی جائیں کھاتے ہی جائیں اور ہضم نہ ہو. تو اس علم کو ہضم کرنا ضروری ہے. ایک اونس علم کو ہضم کرنے کے لیے کئی ٹن عمل درکار ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جب بدہضمی کا شکار ہوتے ہیں عموماً تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ چورن کھا لیں، یعنی پھر بھی کچھ کھانا ہی ہے، پہلے ہی کھایا ہوا ہے پھر اور کھانا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں. تو اس وقت آپ اور میں اس شعور کے ساتھ پارا نمبر 20 کو شروع کرنے والے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے کہے سنے پہ عمل کیا. اور سب سے بڑی بات تو میرے لیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، کیا اس نے میرے اپنے بھی دل دماغ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ آج کے پارے سے پہلے 19 پارے پہ اگر ایک نظر ڈال لیں تو سورت مومنون تو پیچھے تھی، پچھلا پارا جو تھا پارا نمبر 19، اس میں ہم نے سورۃ فرقان کا باقی حصہ کیا تھا اور سورت نمل کی تھی اور سورت قصص شروع ہوئی تھی. اور ان سارے حصوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کبیر کی دعوت دی ہے. آپ کی میری زندگی میں جتنا زیادہ اللہ کی بات کی اہمیت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے رستوں میں نکلتے ہوئے قربانیاں دیتے ہوئے دکھ سے زیادہ خوشی محسوس کریں گے، غموں سے زیادہ آپ کے دل کے اندر خوشیوں کا راج ہوگا. اور اسی طرح سے ہوتے ہوتے آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہی قرآن اور یہی رب کی رضا میری زندگی ہے. 19 پارے میں ہم نے سورہ فرقان کی آیات میں سے جو پوائنٹ اپنے لیے پک کرنا ہے وہ ہے عباد الرحمن. قدم قدم چلتے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا ہی لے گا ایک دن. کسی کی بھی محبت لینی ہو، دعائیں لینی ہو، تو یہ کہنے کی بجائے مجھ سے پیار کرے، مجھے دعائیں دیں، مجھے محبت دیں، یا پھر یہ شکوے کرنا آپ میرے ساتھ یہ نہیں کرتے، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، یہ غلط وقت بات ہوتی ہے. تو اور بھی آپ اگلے کو فرینڈ کر رہے ہیں، بہترین بات کیا ہوتی ہے کہ وہ کرنا شروع کر دیں جو اگلے کی دعائیں اور اس کی محبتیں تمہیں دلا دے. پھر اس کے بعد سورت شعرا میں 227 آیات تھی، جس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ انذر عشیرت کل اقربین تھی، کہ اپنے قریبیوں سے شروع کیجیے. ہم عموماً قریبیوں سے ہی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے کرتوت پتا ہوتے ہیں، پھر انہوں نے ہمیں تانے دینے، اچھا تم یہ کرتی تھی آج یہ کرنے لگی، اچھا اب تم ہمیں سمجھاؤ گی. تو یاد رکھیے اس کے لیے دامن کو بے داغ رکھنا ہے. اور اگر ماضی میں کوئی دامن پہ دھبے لگے ہیں تو حضرت موسیٰ کی سنت اپنا لیجئے جو ہم نے سورہ شورا میں پڑھی کہ ہاں کیا تھا، اس وقت میں جاہل تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا اور اب تو مجھے پتا چل گیا. یعنی اپنی جھوٹی یہ عزت بنانے کی بجائے اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی معذرت کر لیں. پھر اس کے بعد اسی میں نفس سلم کی بے لوس تڑپ تھی، اور سورہ فرقان میں جو جاہد تم بھی جہادن کبیرہ. تو یہ ساری چیزیں مل جل کر آپ کو مجھے ایک اچھا انسان، ایک ذمہ دار انسان بناتی ہیں. اور پھر سورۃ النمل کی 59 آیتیں ہم نے دیکھی کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی دولت دی، आज भी शायद साइंस इसका मुकाबला ना कर सके कि परिंदों की बोलियां, जानवरों की बोलियां समझना, लेकिन इतनी बड़ी नेमतों को पाकर भी कोई बढ़ाई का लफ्ज़ नहीं था, बल्कि क्या था कि रब्बी औज़ेनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनमत अलैह। तो बंदा मोमिन ऐसा ही होता है, अल्लाह ताला आपको मुझे बिल्कुल ऐसा ही बना दे। और आज हम 20वें पारे पे हैं और ये पारा हमारे लिए अल्लाह ताला की मार्फत, उसकी बड़ाई को समझकर, उसके मुकाम को पहचान कर, जिसकी हल्की सी कोशिश हम रात के सेशंस में कर रहे हैं कि मार्फत इल्लाह मिल जाए, और उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला के बंदे बनने की फिक्र करें। दो ही बातें हैं ना, पहले अल्लाह का मुकाम पता चल जाए, फिर उसके बाद अपनी हैसियत पता चल जाए। तो जितनी अपनी हैसियत पता चलती जाए, उतना अल्लाह के आगे झुकते जाएं, और मुश्किल नेकियां आसान होती जाएंगी, और हमें अल्लाह दो गिरोहों में से उस गिरोह में कर दे कि जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हों। और इसी के साथ अगर हम इस बारे में देखें तो हमें या युहल्लज़ीन आमनु से कोई भी एक आयत शुरू होती भी नहीं दिखती। पारा 20 का मेन थीम नुमाइशी कल्चर है, टू फ्लॉन्ट ब्रांड्स, इतराओ, दिखाओ, जलाओ। और इसी तरह से हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज हर एक ही एक्टिंग करता दिखेगा, हर एक म्यूजिशियन है, हर एक पिक्चराइज कर रहा है। एक वो वक्त था कि जब हम कभी बचपन में सुनते थे कि सिनेमा घर में फिल्म देखी जाती है, तो उस वक्त लफ्ज़ फिल्म, वीडियो एक बहुत ही गैर मुनासिब लफ्ज़ था, मायूब था। स्क्रीन के नाम के साथ कई फतवे आ गए थे उस दौर के उलमा की तरफ से, लेकिन आज हर बंदा वो कैमरामैन भी है और फ्लॉन्ट कर रहा है। वही प्रोफाइल्स जो कभी सोचे भी नहीं थे कि इस पे तस्वीर ना हो तो फिर बंदे को पता नहीं चलता मेरी ये कौन सी दोस्त है, ये कौन सी शम्मा है, ये कौन सी नसरीन है, इसलिए तस्वीर लगाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, कितनी मजबूरी। ये सब भी अपनी जगह, लेकिन उलू वन फिल अर्थ, आज इस बारे में आप पढ़ेंगे, इस्तिकबारन फिल अर्थ, ये भी पढ़ेंगे। अभी आपको बताती हूँ कितनी दफा पढ़ेंगे। और ये सारा पूरा पारा आप देखेंगे खुद भी कि कौमों पे अल्लाह की पकड़ क्यों आती है, फिरौन जैसे बुरे हुक्मरान क्यों मिलते हैं, और हामान जैसे मजहबी लीडर्स, और इसी तरह से कारून की तरह के वजीर खजाना क्यों मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम अपने वक्त पे देखेंगे। नस्रु मिन अल्लाह व फतहुन करीब के लफ्ज के साथ हमारे जहन में एक फतह का झंडा होता है, किसी ऊंची सी इमारत पे खड़ा एक शख्स विक्टोरियस बन के दिखता है। लेकिन इस बारे में आपको नस्रु मिन अल्लाह व फतहुन किसी मुजाहिद की नहीं, किसी भी मुल्क को फतह करने वाले कॉन्करर्स की नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे और हजरत उमर फारूक जैसे बड़े बड़े हुक्मरानों की नहीं, एक ऐसी माँ कि अगर वो ये काम ना करती जो उसने किया और अल्लाह ने उसे करा लिया, तो उसका नाम कभी यहाँ ना आता, और वो है उम्मे मूसा। इस पूरे पारे में से आप जब पढ़ते हुए गुजरेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म पर माँ ने बच्चे को दरिया में डाल दिया, और दरिया से अल्लाह ने बच्चे को बचा लिया। आपके बच्चों को भी गंदगी, फहाशी, ओरियानी, बेमकसदियत और इसी तरह की और बलाओं के अजाबों से और उन दरियाओं से अल्लाह ही बचाएगा। शर्त एक है कि उम्मे मूसा जैसा ईमान, ईमान की ताकत, उम्मे मूसा जैसा तवक्कुल, उम्मे मूसा जैसा अल्लाह के वादों पे यकीन हो। पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस बारे में आप देखेंगे कि कई जगह आप खड़े होकर रुक के सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर अल्लाह की बात कहने से दूसरे लोग नाराज होते हैं तो मैं ना कहूँ। फिर आप कहते हैं नहीं, मुझे किसी की खुशी, किसी की गमी, किसी की नाराजगी या रजामंदी से क्या लेना देना, मुझे तो बिलाखिर अपने रब को राजी करना है। तो ईमान की ताकत मतलूब है नुमाइश से बचने के लिए। आज ये एक इतना बड़ा प्लेग बन चुका है कि आज हर चीज में लोग गिने जाते हैं। और इसी तरह से हामान एक मजहबी लीडर, कारून एक माली लीडर और फिरौन एक सियासी लीडर के नाम पे है। तो आज के दौर के मजहब के नुमाइंदों, माली मामलात को पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएटेड हों या अपने अपने मुल्कों में हों, या फिर आप और मैं अपने अपने घरों के, या हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान हों, सब के लिए इसमें तो पूरी दुनिया के सियासी लीडर्स आ जाते हैं, ईमान की ताकत की जरूरत है। अल्लाह सुबहाना ताला ने उम्मे मूसा के जरिए काम ले लिया और उस बच्चे को फिर फिरौन के घर में पलवा दिया, जिस बच्चे को मूसा कहते हैं। ये कहानी तो सारी दुनिया के अंदर मारूफ भी है और मशहूर भी है। लेकिन एक बात जिसके लिए आज मैंने आपने दुआ और ख्वाहिश करनी है, वो क्या है कि अल्लाह आज की माओ को मूसा की माँ जैसा बना और फिर उन बच्चों को मूसा जैसा बना। इस बात को अल्लामा इकबाल आज से कई साल पहले कह के, आगोशे सदफ जिसके नसीब में नहीं है वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गोहर। सदफ के अंदर बारिश का वो पहला कतरा जो दाखिल हो और बाद में वही मोती बनता है, उसको कतरे नीसा कहते हैं। जरा से इंसानी तख्लीक को भी जहन में लाइए, एक कतरा बाद में एक बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अलामा इकबाल ने कहा कि अगर माएं सदफ जैसी हों तो फिर बच्चे गौहर होंगे। सदफ होगी तो गौहर पैदा होंगे, लेकिन जब सीपियां ही ना रहें, सदफ ही ना रहें, तो फिर आज गौहर कैसे पैदा होंगे। इसीलिए फिर आज मोहम्मद बिन अयूबी से लेके और दूसरे लोगों के लिए जमीन तरस रही है। आज की माँ के ऊपर है ये पारा कि अगर वो फ्लॉन्ट करना छोड़ दे, वो ब्रांड कॉन्शियस होना छोड़ दे और वो छोटी छोटी चीज़ों पे ना हो, और आज के बापों के लिए कि पैदा होते ही वे बच्चे को ब्रांड्स के नाम पर चीज़ें दिलाकर उनका जहन का सांचा ही बदल देते हैं। शुरू से इस वक्त अपनी औलादों को जिस चीज़ के ऊपर आप ले आए कि ये कुछ भी नहीं होता, मैं नाम नहीं लेना चाहती कुछ ब्रांड्स के, बच्चे बच्चे को पता है ये क्या है, पर्स तो पर्स ही होता है, जूता तो जूता है, गाड़ी तो गाड़ी है, घर तो घर है। लेकिन अफसोस की बात है कि एडवर्टाइजमेंट की कंपनियों ने बड़े बड़े इश्तेहार दिखाकर हमारे बच्चों के मुंह में राल डाल दी। तो आइए जरा तर्जमे के साथ रहते हैं, पूरे पारे में आपको एक फ्लो दिखेगा इंशाल्लाह, जहां जहां सूरतें आएंगी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। तो शुरू करते हैं, पहला रुकू है रुकू नंबर 5 है जो बेसिकली सूरत का, और 60 से 66 आयात हैं। सूरत नमल, तौहीद के दलाइल। तो सूरत नमल शुरू हुई थी पिछले पारे में। अमन खलक समावाती वल अर्थ, जरा सा इन सवालों को जहन पे लीजिए। ये जो 20वें पारे का पहला रुकू है ना, ये है असल में वो अंदाज जिसको आज वेस्ट ने अडॉप्ट किया। एक दौर था सिर्फ उस्ताद बोलता था और शागिर्द सुनते थे और लिखते थे और झुकते थे और रोते थे। आज क्वेश्चन आंसर स्टाइल है, सवाल करो जवाब दो, सवाल जवाब यानी थॉट को प्रवोक करना, सोल सर्चिंग क्वेश्चन। मक्का वाले अल्लाह ताला को रब मानते थे, इलाह नहीं मानते थे, मालिक नहीं मानते थे, हाकिम नहीं मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी फितरत के अंदर वो वादा अलस जो छुपा हुआ था ना, उसको पेश करते हुए क्या फरमाया, जरा इनसे चंद सवाल तो कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके दिमागों के अंदर जो चीज बैठी हुई है जरा सा उसको खोल कर ये तो इनको दिखा दीजिए, क्या अमन खलक समावाती वल अर्द व अनजल लकुम मिनस समा इमा अनफम बतना बिही हदाइक ज़ात बहजा बहजतिम मा कान लकुम अंतुम बितु शजरहा अ इलाहुम अल्लाह। इस पे रुके, अ इलाहुम अल्लाह, कोई जवाब नहीं, तो उसका खुद ही जवाब, बल हुम कौमी या दिलून। आप देखिए कि तौहीद हर बंदे के दिमाग के अंदर गुंधी हुई है। ये जो हम कहते हैं ना कि नहीं शुरू में लोग शिर्क पे थे फिर नबी आए और तौहीद पे आ गए, ये गलत कहते हैं। आइए इस तर्जमे पे गौर करते हुए इस हकीकत को समझें। अमन खलक समावाती वल अर्ज को निकाल दें, भला बताओ तो क्या आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर इसे हरे भरे बा रौनक बागात उगाए। इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज़ न उगा सकते थे, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? नहीं है, अपने दिल से कहिए नहीं है, बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया, अब ये अल्लाह की रबूबियत की शानें बताई जा रही हैं, और इसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान रोक बना दी, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? बल्कि इनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं। अब मैं युजीबुल मुस्तर इजादा, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता? जवाब दें, अल्लाह। और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है कि अल्लाह ताला के साथ और माबूद है, तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। एक और सवाल, क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीकियों में राह दिखलाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिन्हें ये शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह बुलंद व बाला तर है? हमारा जवाब यह है कि नो। हर सवाल के जवाब में अपने दिल में कहिए कि ऐसा कोई आप जैसा ना कोई है ना हो सकता है। क्या वो जो मखलूक की अव्वल दफा पैदाइश करता है फिर इसे लौटा देगा, और वो जो तुम्हें आसमानों जमीन से रोजियां दे रहा है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। कह दीजिए कि आसमान वालों में से जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता, इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़े किए जाएंगे। यानी ना जिए अपनी मर्जी से, ना मरेंगे अपनी मर्जी से, ना इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए ना जाएंगे। तो बात तो बीच में ये 40-50 साल की है ना, उसमें से भी कुछ बचपन और कुछ बुढ़ापे में निकल गया, तो बीच में ये 15-20 साल की जवानी है जो संभलती नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं असल वजह पता क्या है, अब देखिए जरा आखिरी आयत पे, बल्कि आखरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका है। यानी बस वो फिक्र है आखरत, और कह लीजिए कि नाम की एक आखरत है, और बस इनको दुनिया ही दुनिया इतनी है कि आखरत की फिक्र ही नहीं, ना उसका इल्म है, ना शौक है, ना जौक है, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में पड़े हैं, बल्कि ये इससे अंधे हैं। तीन बातें, आखरत का इल्म ही नहीं, आज की इंसानियत को देखिए कितना कुछ जानते हैं हम, हमारे बच्चे मरने से लेके दोबारा उठने और उठने के बाद जन्नत में जाने तक के मराहिल किस किस को पता है। और आज क्या हमारी नस्लों के दिलों में शक नहीं आ रहा? मक्का वाले भी तो मुसलमान ही थे ना, बिगड़ गए थे हालात के अंदर, ऐसे लोगों के बीच में आ चुके थे कि जिन्होंने आखिरत के बारे में शकूर डाल दिए कि कैसे हो सकता है? मैं यू ही लिजाम वही अरवीन, ये गली भी हड्डी को कौन जिंदा करेगा, सूरह यासीन के बिल्कुल आखिर में सवाल है। तो उनका भी तो यही प्रॉब्लम था ना कि नहीं ठीक है क्यामत आएगी तो मर के मट्टी होंगे। आज दुनिया के बहुत सारे मजाहिब कहते हैं अल्लाह का कमेंट है, ये इससे अंधे हैं, यानी इनकी आंखों पे पर्दा पड़ चुका, किसका? दुनिया का। आइए अब जरा इस रुकू में से कुछ पॉइंट्स लेते हैं। अब मैं युजीबुल मुस्तर, मुस्तर 62 नंबर में जो बात आई, मुस्तर कहते हैं उस शख्स को जिसकी जरूरत कोई भी पूरी ना कर सके, जिसको औलाद कोई डॉक्टर भी ना दे सके, सारे टेस्ट नेगेटिव, इसके बच्चा नहीं होगा, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सारे पीर बाबों ने नो कह दी, सारे तवीज घोल घोल के पिला दिए, कुछ नहीं हुआ, सारे दरों का धुतकारा हुआ बंदा आए मेरे पास, अब मैं युजीबुल मुस्तर इजादा। तो इस्तरार, बेचैनियां, हसरतें, निकम्मे, अपने अंदर एक कुछ गिल्ट होने का एहसास बंदे को मुस्तर बनाता है। आपकी मेरी जिंदगी में कई ऐसे मवाक़े आते हैं और गुजर जाते हैं कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मान लीजिए जब अल्लाह लगाता है, अल्लाह ही संभालता है, अल्लाह ताला के हाथ में मेरा आपका दुख सुख, अल्लाह ताला की जात के ऊपर नजरें लगाकर देख लीजिए, सिर्फ वो ही है जो आपको मुश्किलों में संभालता है। चलिए जिंदगी का कोई मामला याद कीजिए, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और डॉक्टरों ने कहा नहीं होगा, और कभी कभी जॉब की मसले, कभी शादी नहीं होगी, इस बच्चे की शादी नहीं होगी, ये घर नहीं बसेगा, खत्म, जुदा कर दो, ये लड़ लड़ के मर रहे हैं, इनको खत्म कर दो, इनके रिश्ते को। और फिर वो घर जुड़ गया, टूटा घर जुड़ गया, टूटे दिल जुड़ गए, भाई बहन जुड़ गए, और क्या कुछ हमारी जिंदगियों में ना हुआ। तो याद रखिए, एक दर जो सिर्फ दूर है ना, इसलिए नजर नहीं आता। हम दूसरों को इस तरीके से एडमायर कर रहे होते हैं कि जैसे शायद उनके हाथ में हमारा नफा भी है और हमारा नुकसान भी है, और जितना ज्यादा अल्लाह पे नजरें लगाएंगे उतना ज्यादा आप मुतमईन होंगे, और जब जहां नामुमकिन भी मुमकिन लगे, इसको तौहीद कहते हैं। ये है ताल्लुक बिला, ये है मार्फत इलाही। आप जितना ज्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब पाते जाएंगे ना, उतना अल्लाह ताला के ऊपर आपको प्यार भी आएगा और आपका यकीन बढ़ेगा। आप कहते हैं मैंने आजमाया हुआ है, कई बंदों के बारे में आपके जहनों में सवाल होंगे, नहीं इनको आजमाया था, ये मुश्किल में काम आ गए थे। वल्लाह ही अल्लाह की तलब और अल्लाह ताला की पुकार और अल्लाह ताला के हर दुआ को कबूल करने वाली खूबी को आपने पता नहीं आजमाया कि नहीं, मैं तो इसको कहूंगी मैंने कदम कदम पे अपने रब को पाया। कोई है या कोई नहीं है, बस यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात वही है जो एक बंदे को हर वो चीज देती है जिसकी उसको जरूरत है। और जब जरूरतें पूरी हो जाती है ना, तो फिर ख्वाहिशात की लिस्ट खुलती है। लिख लें एक जुमला, अल्लाह हमारी नीड्स को पूरा करता है। और जब वो लिस्ट पूरी हो जाती है, तो फिर हमें वॉन्ट्स की लिस्ट में भी चीजें देने शुरू हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि हम उस पर नजरें लगाएं। ये जो हम कहते हैं ना, दर दर से फिर के फिर कुछ मिल ही जाएगा, तो उधर से लो, चलो लाओ फिर आज अल्लाह से भी मांग लें। तो अल्लाह कहता नहीं, जाओ तुम उन्हीं से मांग लो जिन पे तुम्हें उम्मीद है। तभी तो कहते हैं ना कि बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। फिर ये बता के काफरी क्या है? यानी काफिर सिर्फ वो नहीं होता जो पत्थर के आगे बुत के आगे खड़ा है, काफिर वो भी होता है जो अल्लाह ताला की कुदरत से मायूस हो, नहीं कर सकता, मैंने कह दिया ये नहीं हो सकता। तो आज से अपने लिए इस आयत के साथ एक अमल का नुक्ता लिख लें, मैंने कभी किसी चीज को नामुमकिन नहीं समझना। इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट हैपन, नहीं ऐसा ही होगा देखना, नहीं ये होता ही ऐसा ऐसा ही होगा। किसी इंसान से मुतल्लिक, आपके अपने बच्चे ही हैं, ज़ाहिर घरों में शौहर है, सास है, ससुर है, किसी भी इंसान की हिदायत से मायूस ना हो, वो बदल नहीं सकते, मायूस ना हो। और इसी तरह के जाती जिंदगी के जितने आपके मुशाहदे हैं इस वक्त उनको सामने लाएं, क्योंकि आज बड़ी अहम है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे ही गुजर जाए और आप इसको इंजॉय ना करें। ये तो मेरे रब की कुदरतों को दिखाने वाली आयत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने रब से मायूस होते हैं ना, शैतान आपको अपने हाथ में लेता है। तो हमने अल्लाह से मायूस नहीं होना, बल्कि हमने अपनी नजरें अल्लाह ताला पे लगानी है। पिछले हिस्से में सूरत नमल के आपने मलका सबा की कहानी सुनी, हम होते कहते इसने कहा मानना, इसको क्या, लो ये तो है ही काफिर, ये तो है ही एक औरत, और औरतों की तो अकल ही कम होती है। नहीं, पैगाम दिया, अल्लाह ने उस पैगाम को सुन लिया। और याद रखिए कि अल्लाह जब सुनता है ना, तो फिर असबाब बना देता है। किसी बंदे को ही ले आता है, किसी को इधर से ले आता है, किसी को उधर ले आता है। तो ये सारा कुछ आपकी मेरी जिंदगी में एक उम्मीद और एक होप को लाता है। फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स क्या है हमारे लिए? अल्लाह ताला ही को अपना कारसाज समझना है, अपनी इबादत को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास करना है, दोबारा जी उठने पर ईमान रखना है। और आगे है तीर को नंबर 6, 67 से 82, किताबे मुबीन। वकाल लसीना कफरू, कुफर ने कहा क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, क्या हम फिर निकाले जाएंगे? हम और हमारे बाप दादों को बहुत पहले ये वादे दिए जाते रहे, कुछ नहीं ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं, कह दीजिए कि जमीन पर चल फिर कर जरा देख तो लो। और क्या देखो, जरा देखो तो सही कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। आप इनके बारे में गम ना कीजिए, ये नोट कीजिए, गुस्सा नहीं था नबी को, गम था। देखिए आज हमें गुस्सा आने लगता है, लोग मानते नहीं, लोग सुनते नहीं, लोग आते नहीं, लोग बुलाते नहीं, लोग नमाज नहीं पढ़ते, लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, गुस्सा नहीं गम। और ये जो गुस्सा गम के अंदर से मिली हुई जुली एक कैफियत निकलती है ना, इसको बखा कहते हैं। सूरह शुरा में हमने शुरू से पढ़ ली इस बात को, तो अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं कि इन लोगों के बारे में गम ना करें और इनके दौ घात से दिल तंग ना हो। कहते हैं कि वादा कब है, अगर सच्चे हो तो बतलाओ। जवाब दीजिए कि शायद बाज वो चीजें जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो वो बहुत ही करीब आ गई हो। सोचिए, क्या पता हमारी मौत करीब हो, हमें पता यहाँ से उठना है कि नहीं, घर जाना है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या दुनिया की बातें और क्या दुनिया के संदेशे और क्या दुनिया की चीजों के ऊपर नजरें लगा देना और इसको महसूस करना, बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह जब भी मौत आए तो ईमान की आए और अल्लाह ताला की रजा की हो। यकीन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़े ही फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। बेशक आपका रब इन चीजों को भी जानता है जिन्हें इनके सीने छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं। आसमानों जमीन की कोई पोशीदा चीज भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में ना हो। यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने इन अक्सर चीजों का बयान कर रहा है जिनमें ये इख्तलाफ करते हैं। यही तो उनको जिद थी कि हमारी बातें क्यों खुलता है कुरान। और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हिदायत और रहमत है। आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा, वो बड़ा ही गालिब और दाना है। बस आप यकीनन अल्लाह ही पर भरोसा रखिए, यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। आप इन आयतों का दर्द महसूस कर रहे हैं? नबी का सीना खौलता होगा, दिल जलता होगा, उड़न होती होगी कि आसमान से तसल्लियां आ रही हैं। और ये सूरत नमल भी उसी दौर की सूरत है जब ना मानना ना सुनना और सिर्फ ताने, ना करने की बात ना कराने की। तो अल्लाह करे आप क्यों फिक्र करते हैं। आप देखें कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब दाई दीन को दर्द मिल जाता है और वो भी मोटिवेटेड हो जाता है ना, तो फिर उसको हिम्मत नहीं मिलती। आज भी आप देखिए कि आपके बच्चे को आप जरा सके तुम नहीं पढ़ोगे नमाज तो नहीं पढ़ेगा, और आप कहते हो माशाल्लाह आपने आज एक नमाज पढ़ी, अगली पे भी निकलेगा। तो नेगेटिव थिंग्स जो होती है ना, उनको पॉजिटिव बना देना तो वो उसके नतायज भी बदल जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं यकीनन आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं ना बहरों को, अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेरे रू गर्दां जा रहे हो। यानी अब आपकी तवज्जो किस पर डाल दी, नहीं आप ठीक हैं वो भी ना समझ है। और ये अपनी पेरेंटिंग में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस, और ना आप अंधों को इनकी गुमराही से हटाकर रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो सिर्फ इन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं, फिर वो फरमा बरदार हो जाते हैं। क्या खूबसूरत बात है। जब इनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। चाहें तो इस आयत का नंबर नोट कर लें, ये है दाबतुल अर्ज़ की जुबान पे जुमला। यही आयत उसकी जुबान पे होगी कि लोग रब की आयतों पर यकीन नहीं रखते थे, और उसके बाद कियामत तो बिल्कुल करीब रह जाएगी। यानी वक्त कियामत फिर ऐसे ही है कि जैसे एक औरत के बच्चा पैदा होने का वक्त करीब है, तो उम्मीद होती है कि किसी भी वक्त अल्लाह की तरफ से बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। दो आयतें ईमान से मुतल्लिक इस रुकू में, जिसके अंदर से जो अमल का नुक्ता निकलता है 77 अमल, वइन्नहु लहुदा व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिन के लिए हिदायत और रहमत है, और गैर मोमिन के लिए उजर बहाने, ये नहीं तो वो नहीं। उसको इस किताब से फायदा पूरा हो नहीं सकता क्योंकि उसके दिल में ईमान नहीं है। फिर 81 अमल, जिद्दी और सरकश लोग ईमान से महरूम रहते हैं। अल्लाह ना करे हमारे अंदर दीन की चिड़ आ जाए। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी जब जिद में आ जाता है, दूध नहीं पीता, भूख लगी हुई है, रोते ही जाता है। आप कहते इसको चिड़ चढ़ गई है, पहले इसको जरा सा हम सही करें, जरा सा इसको हम बहलाएं, फिर दूध पिएगा। तो अपने लिए अमल का नुक्ता लिखें, कभी किसी को दीन के नाम पे चिड़ ना चढ़ाएं। कई लोग हमसे चिड़े होते हैं इसलिए वो फिर हमारी बात नहीं मानते। फिर आगे नमल 75 में फी किताबे मुबीन से मुराद लौहे महफूज है। अल्लाह सुबहाना तला ने हर चीज को रिकॉर्ड कर रखा है, अल्लाह ने तो रखा। हम किस चीज को लिखते हैं, जो अहम होती है, लिख लिख के हिसाब रखते हैं चीजों को, कहाँ रखी क्या किया। घरों के डॉक्यूमेंट्स बैंकों में रखते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को छुपा के रखते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज को हिसाब में रखा हुआ, क्यों? कल आपके मेरे सामने पेश करनी है। तो लिखिए क्यामत का दिन क्या है, हमारे अकाउंट्स हमारे सामने पेश करने का दिन। दुनिया में लफ्ज अकाउंट सुनते ही जान निकल जाती है। जून में जब टैक्स का ईयर पूरा होता है तो अमूमन मर्द उस महीने में बहुत ही बिजी और परेशान होते हैं क्योंकि हमने रिटर्न फाइल करनी है। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, और सोचिए जहाँ पूरी जिंदगी की रिटर्न देनी हो। तो लिहाजा फेथ इन एक्शन क्या है, आखिरत की जवाबदेही पे यकीन रखना है। हक की सिर्फ दावत देनी है, किसी को चिड़ नहीं चढ़ानी। तस्लीम करने की नीयत से कुरान का पैगाम सुनना है। अल्लाह मुझे इस आखिरी में तो अमल की तौफीक दे। चंद सेकंड सोचिए, हर एक खुद से पूछे मैं क्यों सुन रही हूँ। आप अगर तस्लीम और रजा के लिए सुन रहे हैं ना, तो आपको तस्लीम और रजा मिलेगी, और अगर आप मेरी गलतियां चुनेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत मिलेंगी। अल्लाह मेरे पर्दे रख ले आपके सामने। और आप अगर चाहती हैं कि आप आलिमा बन जाएं, फाजिला बन जाएं और घर वाले रोप में आ जाएं, तो यही मिलेगा। और आप चाहते हैं कुरान की तकमील पे आपके मियाँ साहब आपको कोई गिफ्ट दिला दें कि आज मेरी बेगम तो आलिमा बन गई, तो वही मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, नुवल्ली ही मातवल्ला। आगे को नंबर 7 है, 83 से 97, छुटलाने वालों की गिरफ्तबंदी। व यौम नख्शुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजा। और जिस दिन हम हर उम्मत में से इन लोगों के गिरोह को जो हमारी आयतों को छुटलाते थे खेर खार कर लाएंगे, फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे। जब सब के सब आ पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने मेरी आयतों को बावजूद इसके कि तुम्हें इनका पूरा इल्म ना था क्यों छुटलाया, और ये भी बतलाओ कि तुम क्या करते रहे। बस अब इसके कि उन्होंने जुल्म किया था इन पर बात जम जाएगी और वो कुछ बोल ना सकेंगे, यानी उनकी बोलतियां बंद हो जाएंगी। देखिए कहाँ तक कुछ झुटलाएगा, अब जब आंसर देने के लिए कुछ चीज ही नहीं तो खामोश है। अल्लाह ताला कहते हैं क्या वो नहीं देख रहे कि हमने रात को इसलिए बनाया कि वो इसमें आराम हासिल कर ले, और दिन को हमने दिखलाने वाला बनाया। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान और यकीन रखते हैं। जरा से उस दिन को सोचिए क्या होने वाला है। एक ग्रैंड गेट टुगेदर है, लेकिन उससे पहले एक बिगल बजेगा, यौम युनफखु फिस्सूर। जिस दिन सूर फूका जाएगा तो सब के सब आसमानों वाले और जमीन वाले घबरा उठेंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे, और सारे के सारे आजीजों पस्त होकर इसके सामने हाजिर होंगे। और आप पहाड़ों को देखकर अपनी जगह पर जमे हुए ख्याल करेंगे, लेकिन वो भी बादल की तरह उड़ते फिरेंगे। सोचिए जरा कितना स्ट्रॉन्ग धमाका होगा कि ये पहाड़ उड़ेंगे, माउंट एवरेस्ट उड़ेगा। दुनिया में कोई धमाके की आवाज है तो हिल जाते हैं, जलजले आते हैं तो फ्यू सेकंड का जलजला होता है और पूरा शहर हिल जाता है। चंद साल पहले इस्लामाबाद में एक जलजला आया, उससे पीछे जाएं तो बालाकोट में एक जलजला आया, बस्तियां पलट गईं। कुरान कहते हैं वजा वाकतिल वाकिया, अल्लाह कहते हैं इजा रुजतिल अर्दु रुजा, ऊपर से नीचे अप्स एंड डाउन, इधर यानी जैसे लट्टू की तरह घुमाए जिधर मर्जी वो घूम जाए। वो चीज गिरती है तो वो सीधी थोड़ी बड़े सलीके से गिरती है, वो हिलती जुलती है, पूरे नक्शे बदल गए थे। क्यामत का दिन कैसा होगा, बादलों की तरह उड़ेंगे। ये है सनत अल्लाह की जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, और जो कुछ तुम करते हो इससे वो बाखबर है। जब पहाड़ों का ये हाल होगा तो इंसानों का क्या होगा। देखिए जब कब्रें फूट जाएंगी, मुर्दे उठ जाएंगे, आप देखिए ना किसी की बड़ी गहरी नींद हो ना, घोड़े बेच के सोए हैं, क्यामत का धमाका घोड़े गधे बकरियां सब बेचकर सोए हुओं को उठा देगा। और कितने पुराने सोए हुए होंगे, तो इसको सीरियस लेने की जरूरत है। संजीदा हकीकत है ये, खेल नहीं। वो माँ हुआ बिल हजल, सूरह तारिक में ये आयत आती है। अच्छा अब आप कहते हैं कि क्या बनेगा, सहाबा भी घबराते थे जब क्यामत की सख्तियों की बात सुनी, घबरा गए, इतना घबरा गए कि नबी ने कहा कहो हसबुनल्लाह व नियमल वकील। इसके अलावा अगली आयतों में अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि जो शख्स नेक अमल करके लाएगा इसे इससे बेहतर बदला मिलेगा, और वो इस दिन घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई लेकर आएंगे वो ऊंधे मुँह आग में झोंक दिए जाएंगे। सिर्फ वही बदला दिए जाओगे जो तुम कर रहे हो, यानी जो पेपर में लिखा है वही आना। कोई तुम्हारे नंबर नहीं लगा देगा और तुम्हारे कोई नंबर काटेगा भी नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। और चूंकि अभी जिंदा हो लिहाजा अभी तवज्जो कर लो, अभी इसके ऊपर नजरें डाल लो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वहां की रुसवाइयों को इज्जतों में बदल देगा। फिर नबी सल्लम से फरमाया मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं जिसने इसे हुरमत वाला बनाया है, जिसकी मलकियत हर चीज है, और मुझे ये भी फरमाया गया है कि मैं फरमाबरदारों में हो जाऊं। हमें भी तो यही फरमाया गया ना, मुसलमान बन जाओ, ओबीडियंट बन जाओ, बात मानो। और क्या कहा गया, और ये कि मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, जो राह रास्त पर आ जाए वो अपने नफे के लिए राह रास्त पर आएगा, और जो बहक जाए तो कह दीजिए कि मैं सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ। कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं, वन करीब अपनी निशानियां दिखाएगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे, और जो कुछ तुम करते हो इससे आप करब गाफिल नहीं। दो आयात है ईमान से मुतलिक, 86 नमल, दीने फितरत, इंसान की हर फितरी जरूरत का ख्याल रखता है। ये लफ्ज जो दीने फितरत है ना, इसको लिख लें दिल पे, हमारा दीन फितरत के मुताबिक है। आप देखिए कि खाना खाते हैं ना, भूख लगती है तो खाते हैं ना, तो खाना गुना नहीं है। सोने पे आपका मेरा इख्तियार नहीं है तो सोना गुना नहीं है। पसीना आता है आपके मेरे इख्तियार में नहीं तो पसीना आने पे गुना नहीं। वॉशरूम में जाते हैं, यूरिनेट करते हैं, आपके हाय गुना होता है यूरिनेट करना, भैया फितरत में है तो गुना नहीं, बस एक लाइन में आपको बोले दीन का मैंने खुलासा दे दिया। गुना या खराब वो चीज है जो आप फितरत से खिलाफ करते हैं। फिर नंबर 89 में है, मन जा बिल हसनति फलहू खैरुम मिनहा वहुम मिन फजा यौम इज़िन आमिनून, ये दुनिया काम की जगह वो दुनिया आराम की जगह। अब यहाँ अगर आपने गौर किए शायद 89 में लफ्ज क्या आया है, जा, ये जा का क्यों आया, उलमा ने इस पे इतनी खूबसूरत बहसें की हैं। देखिए ना आप नेकी करने के लिए क्या कहते हैं, मनामिला सालेहन, या ये भी तो आ सकता था ना कि मनामिला सालेहन, या जिसने हसना की, या फला या तब फला या जो भी कह दे। जा का लफ्ज बता रहा है कि नेकी सिर्फ करनी नहीं साथ लेके आनी है। आप घर से निकले अपनी दोस्त के घर जाने के लिए, आपने एक बड़ा अच्छा केक बनाया, बड़ा सॉफ्ट था, आप सारा रास्ता केयरफुल रहीं कि कहीं हिले ना जुले ना टूट ना जाए, कोई बच्चा ही ना उसमें हाथ डाल दे। जब आप अपनी दोस्त के घर पहुंच गई और खैर और आफियत से वो केक उसको पेश कर दिया, आप कामयाब हैं। लिखिए, नेकियां करना आसान है, संभालना मुश्किल। ये नॉर्वे में कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू मेक स्नोबॉल, वो बच्चे भी बर्फ से बॉल बॉल बनाते रहते हैं ना, स्नोमैन, बट इट्स वेरी हार्ड टू कीप इट। चंद सेकंड अब बर्फ का गोला हाथ में ले, आपकी उंगलियों की पोरें झड़ जाएंगी। याद रखिए, नेकियां करिए और संभालिए। और ये मुझे आपको सबको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ख्याल है कि हम बड़ी नेकियां करते हैं और जो सुनने नहीं आते, जो पढ़ते नहीं पढ़ाते नहीं, घरों में सोए रहते हैं बैठे रहते हैं, वो नहीं करते। और एक इसकी टिप दूं, जुबान की हिफाजत कर लीजिए, नेकी की हिफाजत हो जाएगी। जी, कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा बड़ा सोच सोच के, गौर करते हुए लिख रहे, सोच रहे, माइंड बना रहे हैं? कई दफा ऐसा होता है मैंने पढ़ना होता है तो मुझे बिल्कुल पुरसकून माहौल चाहिए होता है, मुझे अपने दिल की धड़कन भी कभी कभी चुभती है, बिलीव मी, डिलीवर करते वक्त भी मेरी यही आदत है कि जरा सी चिट-चिट भी आती है तो मुझे ऐसा लगता है बिखर गया, डिस्पर्स हो गई मेरी सोच। अच्छा, आपने बड़ी मेहनत कर कर आके ये सब किया, अभी सेव नहीं किया और एकदम लैपटॉप की बैटरी चली गई और उसमें कोई ऑप्शन नहीं थी कि इसको सेव करें, कैसा लगेगा? तो क्यामत के दिन आपकी मेरी ये नेकियां साथ रहें, ये दुआ करें। एक हदीस का खुलासा कि क्यामत के दिन कोई शख्स होगा और अपनी नेकियां ढूंढ रहा होगा, नहीं मिलेंगी, नजर नहीं आ रही, फरिश्तों से पूछेगा मेरी कुछ नेकियां थी मुझे आज दिख नहीं रही, जैसे आप अक्सर ही पूछते हैं मेरी इधर चीजें रखी थी किधर गई क्या गई, तो फरिश्ते कहेंगे हाँ वो थी लेकिन तुम्हारी हीबतों की वजह से वो जाया हो गई। हीबत इज अ डिलीट बटन, वो आपकी नेकियों को जाया कर देता है। फिर 89 नमल में देखिए, वहुम मिन फजाई यौम इज़िन आमिनून, नेक काम करने वालों को अल्लाह घबराहट से बचा लेगा, इसका मैंने वहां आपको हिंट दिया था। क्यामत का दिन, खौफ हरास का दिन, अपसेटनेस का दिन, लेकिन वो लोग वहां बहुत अमन में होंगे जो दुनिया में खौफ सताते हैं, मुशफिकून, जो दुनिया में काम काम के जीते थे, जिनको चैन ही नहीं आता था। सही रिवायत है कि दो खौफ और दो अमन अल्लाह किसी दिल में इकट्ठे नहीं करेगा, और अगर मैं भूल नहीं रही ना तो ये हदीस कुदसी है, दो खौफ और दो अमन के, कि जो दुनिया में खौफ ज्यादा हुआ वो आखिरत में भी खौफ में हो, ये नहीं होगा, और जो दुनिया में निडर और बेखौफ हुआ और वहां भी वो निडर रहे, हेयर और देयर, इधर और यहाँ भी या वहां भी। तो क्या पता चला कि नेकी के किसी काम को भी हकीर नहीं समझना। फिर 92 नमल में एक लफ्ज आया, अतलुवल कुरान, आओ मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं, तो कुरान का मिजाज सुनने वाला है। आप जितना मर्जी सादा कुरान पढ़ें, किसी सिस्टर ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि मैं 21वें पारे पे हूँ, तो मैंने फौरन उसी दिन हिसाब लगा लिया कि 5 नहीं 6 पारे ये रोज पढ़ रही हैं, क्योंकि उस दिन शायद इसी तरह का हिसाब बन रहा था। कहाँ है उसकी रोक टोक, कहाँ है उसके अवामिर, कहाँ है तदब्बुर, कहाँ है फेथ इन एक्शन। पढ़ना तो बड़ा आसान है, सुनना मुश्किल है। और लफ्ज तला यतलु तिलवन जो होता है ना, ऐसे होता है तला यतलु तिलवन, ये स्टेप्स देखिए, एक स्टेप एक स्टेप स्टेप, रुकता नहीं बंदा इसमें। तो तिलावत का लफ्ज हमें दिखा रहा है मुसलसल पढ़ो, एक के पीछे दूसरे को लगा देना। इमाम शाफी रहमहुल्ला एक मौके पे इज्तिहाद के बारे में गौर कर रहे थे कि किसकी दलील मुझे कुरान से या सुन्नत से मिले? 300 बार उन्होंने कुरान पढ़ा, और जब 301वीं बार यानी 301th टाइम पढ़ने लगे तो सूरत निसा की आयत, जो बड़ी मारूफ आयत है, उस पर पहुंचे, तो फिर उनको इस्तेहाद की आयत मिल गई। आप मैंने क्या पढ़ लिया अभी? हमें क्या अपने सर पे कोई कलगी और तमगा लगाने की या क्राउन पहनने की जरूरत है? अभी तो झुकने की जरूरत है, अभी तो हमें सीखना है। सुनने से सवाब मिलता है, पढ़ने से हिदायत मिलती है। आपको मिल रही है इधर? पढ़ने से हिदायत मिलती है। सिर्फ सवाब लेना होता तो तर्जुमा भी बहुत था माशाल्लाह, लेकिन हम सारी कोशिश और मेहनत जो करते हैं ना, जो वक्त भी लगता है, वो तर्जुमे पे नहीं लगता। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि यहाँ से फिर इतना वक्त लगा के आप जैसे लोग मेहनत से बैठते हैं, तो फिर आपको यहाँ से हिदायत भी मिले और मुझे भी। फिर आप देखिए नंबर 89 में, वहुम मिन फज़ाइन आमिनून, वो उस दिन के बड़े धमाके के दिन से बड़े अमन में होंगे। अभी हमने सुना ना कि क़यामत कितने धमाकों से आएगी, पर आप मुतमईन होंगे, आप बिल्कुल पीसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में लरस रहे थे, कांप रहे थे, खौफ था। जिसको दुनिया में खौफ लग गया, अल्लाह उधर बेखौफ कर देगा। तो नेकी में किसी चीज को हकीर ना समझो, चाहे यही हो कि तुम अपने मुसलमान भाई को खिलते हुए चेहरे से मिलो। ये सही मुस्लिम की रिवायत का खुलासा है 6690 नंबर की। हजरत सुलेमान ने भी मुस्कुराहट ही दी थी ना, क्योंकि मुस्कुराहट ही है, हा हा ही नहीं करना चाहिए। ये भी लिख लें, ठट्ठेबाजी, ऊंची आवाजों में हंसना। मैं क्लास की बात नहीं कर रही, क्लास में कोई नहीं हंसता, दावतों में, पार्टियों में, क्लास के बाद उठते बैठते, मोमिन के मिजाज में एक ठहराव है, वो बड़ा अजीब तरीके का उसके अंदर एक हुसन होता है, तो स्माइली फेस रखा करें। और सहाबा कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमने किसी को स्माइली नहीं देखा, हमें तो मुस्कुराहट ही भूल गई, मसरूफ ही बड़े हैं, मुस्कुराने का वक्त है। लोग क्या कहते हैं, मरने का टाइम नहीं, जीने का टाइम नहीं, गंगी का टाइम नहीं? भैया इतनी देर में तो आप मुस्कुरा चुकी होती, वक्त है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं। तो फेथ इन एक्शन क्या है? कायनात की निशानियों पे गौर करके अल्लाह ताला की हिकमत को पाना है, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बन के जिंदगी गुजारनी है, और कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है, और फिर इस पर अमल करना है। और आपने देखा कि सूरत नमल शुरू हुई थी अल्लाह की निशानियों के जिक्र पे और ख़त्म हुई निशानियों पे।